Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Sahanavavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय अभी नहीं भूमिका लेके हाँ नहीं भूमिका लेके प्रातः स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस प्रातः प्रवचन के सत्र में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित एक लघु ग्रंथ है जिसका नाम है धन्याष्टक। त्रिदिवसीय प्रवचन में इस धन्याष्टक पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक हम लोगों ने 5 श्लोकों तक विचार कर लिए थे, जहां यही बताया गया 2 दिनों में कि व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करे जो ज्ञान इंद्रियों की चंचलता को शांत कर दे। जो ज्ञेय ब्रह्म है, जिसके जानने के बाद मुक्ति हो जाती है, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है, वही हमें जानना चाहिए। जीवन का लक्ष्य जिसने मोक्ष को ही बना लिया है, उसी का ही जीवन धन्य है। अन्यथा संसार के विषय भोगों में तो कितनी बार इंद्र बनकर के हम कितना भोग नहीं भोगे होंगे, लेकिन वहां से भी हमें शांति तो मिली नहीं। तो इन विषय भोगों में हमें क्या शांति मिलेगी? इसलिए अपने उस स्वरूप पर स्थित होने के लिए सबसे पहले विषयों को जीतो। किसको जीतना है? विषयों को अक्रम से जीतना। पहले स्थूल विषय, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, फिर मद मोह राग द्वेष काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं, जिन शत्रुओं ने आपके हृदय पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, पहले उनको जीत करके उनको अपने हृदय से बाहर निकाल दो। अब उनके बाहर निकलते ही आपका चित्त ही चित्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चित्त ही क्या बन जाएगा? चित्त बन जाएगा। बस ये शत्रु ही उसको गुलाम बनाए हैं। भाई देश तो वही है ना, अब वो गुलाम है। अब गुलामी हट गई तो क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो हमारा चित्त विषयों का गुलाम है, तब तक तो परिच्छिन्न है। आज जिस दिन चित्त की गुलामी समाप्त हो जाएगी, किसकी गुलामी? चित्त की गुलामी। और उस पर शासन किसने कर रखा है? मोह राग द्वेष काम और क्रोध रूपी शत्रुओं ने। उनको मार करके उनसे अपने राज्य को क्या कर लो? छीन लो। और छीन करके अपने अमृत स्वरूप को जान करके, जो परात्म विद्या रूपी कांता के साथ विचरण करता है, उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है। और जो विषय भोग रूपी अप्सराओं के साथ रमण करता है, वह तो भ्रम निलय परिभ्रमंती आवागमन के चक्कर में भटकते ही रहते हैं। इसलिए नीचे जाने के साधन इस घर में अथवा शरीर में आसक्ति को छोड़ो और आत्म जिज्ञासा से उपनिषदों के अर्थ के रस का पान करो। संसार के भोगों की स्पृहा न करते हुए उनसे विरक्त होकर के जो असंग भाव से इस संसार में रहता है उसी का जीवन जीना धन्य है। इसे दो सबसे बड़े शत्रु हैं, द्वे पदे बंध मोक्षाय, ममेति न ममेति च। बंधन मोक्ष बहुत टिपिकल काम नहीं है, बहुत कठिन नहीं, दो पदों का है खेल। ममेति न ममेति, कहते ममेति बंधाय, बंधन के लिए तो क्या करो, मेरा मेरा जो करता हुआ क्या है, बंधन का कारण बनता है, और न ममेति मोक्ष का कारण बन जाता है। मान और अपमान में हम क्या रखें, एक समबुद्धि रखें। कैसे समबुद्धि रखें, इस पर विस्तृत चर्चा कल हो गई, आज तो सिंहावलोकन हो रहा है, अब क्या करें। कल आप लोग संडे बना रहे थे, समदर्शिनश्च, सबके प्रति एक भाव रखो। यहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा, 10 लाख के कार की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत 1 रुपए के एक नट की भी है, नहीं है, जो पांव के पास ब्रेक वायर को कसने काम आता है उसकी कीमत हो सकता है 1 रुपया 5 रुपए होवे, लेकिन 1 रुपए का यदि वह नट न होवे तो 10 लाख की कार आपकी बेकार है। तो छोटे से छोटे व्यक्ति की भी उतनी ही वैल्यू है जितना बड़े से बड़े व्यक्ति की। इसलिए कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति जहां जिस अवस्था में रखा गया है, सब व्यवस्थित रखा गया है, कोई व्यक्ति वैल्यूलेस नहीं है। नीव के ईंट की कीमत भी उतनी है जितना आपके कंगूरे की वो दिखाई देती है डिजाइन बाहर जो सुंदर दिखती है, भले वह ईंट कुरूप है। कौन सा नीव के भीतर रहने वाला जो पत्थर है भले गढ़ा नहीं गया है, कुरूप है, अब बाहर का पत्थर बड़ी गढ़ाई की गई है, लेकिन वह नीच की नीव की ईंट न होए तो ऊपर की बिल्डिंग क्या करेगी बताओ। तो सबकी उतनी ही कीमत है। कर्तारम अन्यम अवगम में, कर्ता कोई और ही है, प्रकृति है कोई और ही है, उसको जान करके जो भी कर्म है उसी को दे देना। कर्म का बोझ, कर्म के फल को अपने ऊपर लादना, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता मानोगे ना तो भोक्ता मानने के लिए भी बाध्य हो जाओगे पक्का। कर्ता मानते ही भोक्ता अपने आप आ ही जाएगा पक्का, समझ लेना। इसलिए कर्ता अहम इति मन्यते कौन है, अहंकार विमूढ़ात्मा। इसलिए काहे को अपने आप कर्ता मानते हो, कभी कभी विचार भी करना हम करने वाले हैं क्या बताओ। इस सारे संसार पे शासन किसका चल रहा है, हम मनुष्य ही अपने आप को कर्तृत्व भाव से युक्त मानते हैं। और सबसे अशांत भी है यदि जीवन में कोई व्यक्ति तो कौन है, अरे भाई मनुष्य के अलावा भी कितनी लाख योनियां हैं, 84 लाख 83 लाख 99, कितना है बताओ, उतनी योनियां भी है ना, वो उतनी अशांत नहीं है क्योंकि वे लोग अपने ऊपर कर्तृत्व भाव लादते नहीं। और आदमी ही कर्तृत्व भाव लादता है और इसके कारण वह सबसे ज्यादा क्या है, अशांत है। इसलिए कर्तारम अन्यम अवगम में, ये सब प्रकृति म्यांति भूतानी निग्रह किम प्रकृते क्रीमांगानी गुणई कर्मांग सर्वस्व, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म हो रहे हैं। जब वही कर करा रही है तो उस करने के बोझ को हम क्यों लादें। एक बड़ी मुश्किल बात आती, एक छिपकली थी कहां छत पे, हमने कहा छिपकली भाई तू कहां छत पे लटकी हुई है, किनारे तो चली जा। तो छिपकली ने कहा छत का सारा बोझ है मैंने उठाया हुआ है, यदि मैं न उठाऊं ना तो छत क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अब बताओ छिपकली का वो कहना उचित है कंचित है। और आप भी घर में क्या बोलते हो, बोलो भाई सारे परिवार का बोझ है मैंने उठाया हुआ है, यदि मैं न उठाऊं तो सब क्या हो जाओगे। अरे दुनिया का सारा बोझ उठाने वाला कौन है बताओ है? एक बहुत बढ़िया कथा भी आती है, वो गोवर्धन उठाए थे कौन, कृष्ण ने। अब वो गोवर्धन उठाया हो वो तो भगवान ही जानेंगे ठीक ना, लेकिन एक गोवर्धन है, गोवर्धन मान जानते ना इंद्रियां, और वर्धन माने क्या हुआ, जहां बढ़े पुष्ट होवे। तो सारी इंद्रियां किस गोवर्धन में पुष्ट होती हैं, इस शरीर नहीं, शरीर रूपी पहाड़ पे सारी इंद्रियां हमारी क्या होती हैं, पुष्ट होती मजबूत होती हैं। तो इस पहाड़ को उठाने वाला कौन है, वो सत्ता ही है। हम कहते हैं ईश्वर को मानो, प्रकृति को मानो, पड़ोसी को मान लो, हमसे मतलब नहीं है, किसी को मान लो। कोई सकता है अपने ऊपर बोझ मत लादो, अपने ऊपर का बोझ किसी के ऊपर डाल दो, हमें काहे को करना है। तो सारे को बोझ उठाने वाला कौन है? वह परमात्मा ही है, हा? या वो प्रकृति है, नेचर है, किसी पर डालो, लेकिन अपने ऊपर। एक काफी मोटा सा आदमी था, एक भगत, उसने कहा भगत जी राम राम। तो उस मोटे आदमी ने कहा अरे मैं कहां भगत हूं, मैं तो बड़ा क्या हूं, पापी हूं, आप भगत जी मुझे नमस्कार मत किया करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहां नमस्कार कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर बैठे उस परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता हुआ इतने स्थूल शरीर को उठाए घूम रहा है। आप खुद सोचो, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ परमात्मा का कोई उतना ही है ना, लेकिन इतने स्थूल शरीर को देखो एक झटके में क्या करता है, उठा देता है। अभी वो सत्ता न देवे तो देखो किसी भी शरीर को उठाना कितना भारी काम होता है, बताओ। तो इसलिए इसको हल्का कौन बनाया हुआ है? जो सत्ता है, जो शक्ति है, तो वही सब कुछ कर रही है, ऐसा जान करके उसी पे ही कर्म परिपाक फलानी। कर्म के जो फल, परिपाक माने कर्म के फल हैं, कर्म करने के बाद का जो फल होता है उसी को अर्पित करके जो रहता है वह खाली खाली रहता है, और जो खाली खाली रहता है वही धन्य है, और जो बोझ लादा घूमता है उसकी आंखें उसका चेहरा देख लेना, अरे अपने आप को खाली रखा करो ना। कई तो क्या बोले, ऑफिस का काम घर में, घर का काम ऑफिस में, बोझ लादे देते ना। अरे दुकान को दुकान ही देखे छोड़ क्या जाना, सत्संग में आ जाना तो पूरी तरह से क्या बनना, सत्संगी बनकर रहना। और लेकिन सत्संग को वहां नहीं छोड़ देना, दुकान पे सत्संग को जीवन में उतारना, वो दुकान के संसार के कामों को क्या करना, ऊपर ऊपर से करना, एक अभिनेता की तरह करना, तो आपको वह कर्म भी बंधन का हेतु नहीं बनेगा। सारी ऐसाओं को छोड़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की तरफ ही देखता है और शरीर की यात्रा को भिक्षा रूपी अमृत के द्वारा सेवन करता है, प्रारब्ध के गले में डाल करके, प्रारब्ध कंठार्पितम, शरीर के भरण पोषण निर्वाह की चिंता किसके गले में डाल देता है, प्रारब्ध के गले में डाल देता है, और डाल करके शरीर से निश्चिंत हो जाता है, शरीर से निश्चिंत हो जाता है। वह व्यक्ति क्या करे, जो परात परह ज्योति है, ज्योतियों का भी जो ज्योति है, भाई दिन में हम सूर्य के प्रकाश में देखेंगे, रात में चंद्रमा के प्रकाश में देखेंगे, ये सब न होवे तो हम आत्म प्रकाश में देखते हैं, तो जो ज्योतियों का भी ज्योति है वह परमात्म संज्ञक है। जो व्यक्ति एकांत में अपने हृदय में उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं वह व्यक्ति ही संसार में धन्य है। छठवां मंत्र उच्चारण करेंगी हमारी मीता बहन।
न सन्न सन्न सद सन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमन्न च न पुंसकमेक बीजम् यैर्ब्रह्म तत्समनुपासितमेकचित्तैर्धन्याविरेजुरितरे भवपाशबद्धाः।
अब ऊपर वाले श्लोक में बताया कि जो पर से भी पर है, मतलब ज्योतियों का भी जो ज्योति है, वह कौन है? परमात्मा संज्ञक, वह परमात्मा है। उस परमात्मा के स्वरूप का हम ध्यान करें, कहां करें? एकांत में, हृदय में। एकांत हृदय माने क्या हुआ? विषय भोगों से रहित चित्त में उसका हम ध्यान करें। अब एक ग्रंथ है उत्तर गीता, कौन सा? उत्तर गीता। उसमें अर्जुन जी पूछता है भगवान से कि अरे आपके भी प्रश्न है, कई बार हमसे कहते हैं महाराज जी न भगवान का रूप है, न भगवान के लिए कोई क्या है, शब्द है। तो उस अब व्यक्ति ध्यान उसी का करता है जिसके बारे में पहले कभी कोई स्मृति बनी होवे। तो जैसे हमारा सकल सूरत देख लिया तो क्या करोगे, घर में जाकर के आंख बंद करके कम से कम मेरी सकल तो याद करोगे, नहीं करोगे? अब मान लो सकल भी नहीं याद किए हो तो मेरे आवाज को सुनकर के कम से कम याद करोगे, नहीं करोगे? किसी न किसी रूप में तो आपको मेरी स्मृति آئے گی. اب بھگوان کی دو نہ میں نے کیا سنی ہے, آواز سنی ہے کہ مدھر ہے کہ کیسی آواز ہے, اتوا نہ ان کا ہم نے کوئی روپ دیکھا ہے, اس پرماتما کا ہم دھیان بھی کیسے کریں؟ ایسا ارجن کے من میں کیا آتا ہے, پرشن آتا ہے. یہ اتر گیتا میں گور پاداچار جی کی ٹیکا ہے, اس پہ دیکھنا ہے گیتا پوری ہو جائے تو اتر گیتا بھی سوادھیائے میں آپ شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, گور پاداچار جی کی اچھی ٹیکا ہے. تو وہاں گور بھگوان کرشن نے خود بتایا ہے کہ سب کچھ پورن ہے, اس روپ میں بھی اس پرماتما کا دھیان چلتا ہے. مطلب کیا کرنا, کیسے دھیان کرنا ہے, سب کچھ اس پرماتما سے کیا ہے, اوتہ پروتہ ہے, پورن ہے. اس روپ سے بھی جو چنتن کر رہا ہے نا, وہ پرماتما کے نرویشیش روپ کا چنتن کر رہا ہے. یہ بھی ایک دھیان کی کیا ہے, پرکریا ہے. روپ سے ہی نہیں پرکریا ہے, سب کے روپوں میں کیا ہے, اوت پروت پورن, وہی پورن مدہ پورن ادم پورنات پورن مدچتے. اس روپ میں بھی جو دھیان کرتا ہے تو اسی دھیان کی ایک پرمپرا کو بتا رہے ہیں, نا اسط ان ست. تو پہلے سمجھ لینا نا ست, وہ ست نہیں ہے. یہاں ست کا مطلب کیا ہے, ست مانے مہد آدی سے لے کر کے, آپ نے ابھی پڑھا ہوگا گیتا جی کے برہمے شلوک میں, گیم یت پروکشامی یجگاتوا مرت مسنتے اناد مت پرم برہم ن ست تنا اسدو اچتے. اس کی بہت وسترت ویاخیا آپ لوگوں نے سوادھیائے میں کر ہی لیا ہے. تو ست مانے یہاں یہی بتایا کہ ید ادم, جو کچھ ادنتیا پرتیت ہو رہا ہے, ادنتیا یہ سے کیا پرتیت ہو رہا ہے, نام روپ جاتی گنگ کریا سے نردشٹ جو ہے, جو ابھیویکت ہے مہد آدی سے لے کر کے پورا بھوت پریانت. ابھیویکت چھوڑ دینا بھی, کہاں سے, مہد سے لے کر کے مہد اہنکار, اس سے من اندریاں تنماترائیں اور پانچ بھوت, پانچ بھوتوں سے بنا ہوا سارا سنسار جو ہماری اندریوں کا کیا بن رہا ہے, بشے بن رہی ہیں, یہ سب کے سب جتنا بھی کاریہ سموہ ہے یہ سب کے سب ست نام سے کہا جاتا ہے. کیا ہے, ست ہے. تو وہ یہ روپ والا نہیں ہے, ست نہیں ہے. پھر کیا ہے, ست نہیں ہے تو اسط ہوگا. کہتے اسط کا یہاں ارتھ لینا کارن ہے. اسط کا مطلب کیا ہوا, جو ابھیکت ہے, کارن ہے, بیج ہے, کیونکہ وہ بھی تو ساویو ہے نا. پرماتما تو کیسا ہے, نر اویو ہے. پرماتما کیسا ہے, نر اویو ہے. اور جو اسط ہے وہ کیا ہے, ساویو ہے. ان میں بھی تین گن ہیں, ست رج اور تم. تو کار کارن دونوں سے وہ کیا ہے, پرے ہے. اس کا مطلب ہے سمجھ, نہ اسط نہ ست. تو کہو ست اسط دونوں ہوں گے, کہتے ایک ہی ادھشٹھان پر ہے بھی اور نہیں بھی, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. تو نہ ست ہے نہ اسط ہے, بلکہ تو کیا مہت ہے, کہتے نہ مہت ہے, بڑا بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو یہ دو کی ستا وہیں آئے گی, دو کی ستا وہیں آئے گی جہاں ایک ہوئے. بڑا وہاں کہو گے جہاں چھوٹا ہے, اور چھوٹا وہاں کہو گے جہاں بڑا ہے. بھائی آپ کہتے میرا بڑا بیٹا ہے, کیا بولے, اے میرا بڑا بیٹا ہے. بڑا وشیشن لگاتے ہی لگتا ہے ایک چھوٹا بھی ہوگا. یعنی آپ کو بولا جائے اے میرا بیٹا ہے, تو بڑا چھوٹے کا چوائس نہیں آتا ہے. پہلے تو گھی آتا تھا, کیا آتا تھا پہلے, کیا چلتا تھا, ارے گھی بکتا تھا بازار میں, کیا بکتا تھا, گھی. اب بعد میں جب ڈالڈا آ گیا تو کیا ہوا, دیسی گھی. کیا ہوا, دیسی گھی. اب بعد میں اور کیا گیا, شدھ دیسی گھی. مطلب دیسی میں بھی شدھ دیسی گھی ہو گیا. تو کتنے وشیشتائیں بدلتی جا رہی ہیں, جیسے جیسے وہ آتا جائے گا. تو اس کا مطلب اشدھ دیسی گھی بھی ہوتا ہوگا, یعنی شدھ دیسی گھی ہے تو کیا ہوتا ہوگا, اشدھ بھی ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ. تو اس لیے ہاں یعنی ہم نے بڑا کہہ دیا تو کہو ترنت آپ کہہ دو کہ مہاراج جی چھوٹا تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہ بڑا ہے تو چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے چھوٹا کہہ دیا तो बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा न वह बड़ा है न वह क्या है छोटा है, क्योंकि वहां दो की सत्ता तो है ही नहीं। जब एक ही एक है तो एक को हम क्या बड़ा कहें और क्या छोटा कहें, वहां तो यही बोलना पड़ेगा मेरा मराजी बड़ा भी यही है और छोटा भी यही है। आप लोग कहते हो ना बेटी है तो क्या बोलते हो, मराजी यही मेरा बेटा भी है यही मेरी बेटी भी है, दोनों यही है, बोलते नहीं बोलते हो। यदि हमने एक कहा बेटा है तो तुरंत बेटी का संसर्ग आ जाता है, यहां तो बेटा बेटी दोनों क्या है एक ही है। तो महत और क्या है, महत और अंगू वह कुछ नहीं है और दोनों वही है। तो क्या होगा वो लिंग है, क्या है लिंग है, लिंग माने स्त्री है न स्त्री, अरे वो स्त्री भी नहीं है तो क्या पुरुष है, क्या न पुरुष न पुरुष भी है तो क्या है न नपुंसक, नपुंसक भी नहीं है बल्कि एक बीजम, वह एक सबका कारण है जान लेना। एक दिन ऐसे कल मैं विचार कर रहा था, एक बिजली है, क्या है बिजली बोलते ना करंट को, क्या बोलते हैं करंट आया करंट आई, आया क्या आई बिजली आई, बिजली आई और वही बिजली आई और पंखा चल रहा है, पंखे में घुस गई तो पुलिंग बन जाएगी, पंखे में घुस गई तो वही बिजली क्या बन जाएगी पुलिंग बन जाएगी, और बल्ब में जल रहा है जल रही है जल रहा है पुलिंग, और ट्रेन चल रही है ट्रेन आ रही है तो ट्रेन में भी सत्ता किसकी है बिजली की, लेकिन ट्रेन में बिजली घुस गई तो क्या बन जाएगी लड़की बन जाएगी, और बल्ब में घुस जाएगी बिजली तो क्या बन जाएगा लड़का बन जाएगा। तो बताओ उस बिजली का कोई लिंग है क्या, मेरी बात समझना है हा? क्या है एक ही बिजली है, लेकिन एक ही बिजली बल्ब में घुस गई तो पुलिंग है और ट्रेन में घुस गई तो स्त्री बन जाएगी। अब बताओ ट्रेन का कोई लिंग है क्या, ऐसे जैसे शरीर के साथ उसका संबंध हो जाता है वह उसी लिंग वाली हो जाती है, लेकिन परमात्मा उसका कोई लिंग है ही नहीं, न वह स्त्री रूप है न वह क्या है पुरुष रूप है, नपुंसकम एक बीजम और न नपुंसक है बल्कि क्या है एक बीजम, सबका क्या है एक कारण है। कई लोग बड़ी लड़ाई कर देते हैं परमात्मा को स्त्री मान लेते हैं, देवी पुराण वाले परमात्मा को ही मान लेते हैं, उसको एक तरह शक्ति है एक पावर है, जैसे आज बता रहे ना जैसे सोलर एनर्जी सब जगह व्याप्त है तो जहां जहां मोबाइल उसको मिलते हैं, मोबाइल माने आजकल सोलर मोबाइल भी चल रहे हैं ना अभी नहीं आए हैं, अरे भाई बैटरी वाले ओ सोलर एनर्जी से चलने वाले कैलकुलेटर जहां जहां जाएंगे वहां वहां उस सूर्य की एनर्जी को लेकर के अपने व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे मुझे बता दो, अथवा सोलर से चलने वाली कोई कार होवे तो जहां जहां सूर्य जाएगा वहां वहां कार दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी, अथवा सोलर से चलने वाली कोई बैटरी होवे तो जहां जहां जाएगी वो प्रकाश भी देगी नहीं देगी, लेकिन सारी ऊर्जा किसकी है, तैसे वो परमात्मा पूरी एक शक्ति रूपा है, उसी शक्ति रूप परमात्मा में सत्गुण मिल गया तो ब्रह्मा नहीं विष्णु, रजोगुण मिल गए तो ब्रह्मा और तमोगुण मिल गए तो रुद्र या शंकर, यही तो बने ना, वही शक्ति है ध्यान देना, उसी शक्ति में सत्वगुण मिल गई तो सरस्वती, रजोगुण मिल गई तो दुर्गा और तमोगुण मिल गई तो काली, फर्क क्या पड़ता है, और उसका नाम कुछ भी रख दो वहां शिव रख दो नारायण रख दो वह शक्ति रख दो, लेकिन उसी शक्ति के उन गुणों के अधिकता और कम होने के कारण उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में सब नाम उसके हैं और उसका कोई अपना नाम है ही नहीं, तो सारे लिंग उसके हैं तो उसका कोई लिंग है ही नहीं। तो जिस किसी के द्वारा, यही माने जिस किसी के द्वारा ब्रह्म तत्व उस प्रकार का ब्रह्म है, जिस किस प्रकार का ब्रह्म है? जो न सत है न सत है सत असत दोनों भी नहीं है, जो न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, जो सर्वरूप है समुपासित है, अच्छी प्रकार से उसका चिंतन करता है, ध्यान देना ब्रह्म की पूर्णता का जो व्यक्ति क्या करता है सम उपासित अच्छी प्रकार से चिंतन करता है। कैसे चिंतन करता है? एक चित्ता, एकाग्र होकर के मन में उस ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। अभी हम ब्रह्म का चिंतन नहीं करते हैं, किसका चिंतन करते हैं? संसार का चिंतन करते हैं। विषय क्या करें, बड़ा गंभीर विषय है, इसके विषय में बताना। देखो कभी कभी संसार घुस जाता हमारे बीच में, फिर कभी कभी घुस जाए ना तो संसार आपके बंधन का हेतु नहीं बनेगा, ध्यान देना। मध्यम ज्ञानी तो होगे, उत्कृष्ट ज्ञानी नहीं बनोगे। वो कौन सा ज्ञानी होगा? मध्यम ज्ञानी होगा। कौन व्यक्ति? जो पहले उस परमात्मा के चिंतन में डूबा हुआ है। कौन सा परमात्मा? वही न सत्य है, न सत्य है, न महत है, न उ है, इस परमात्मा में। बाद में थोड़ी देर के लिए संसार में घुसा तो, लेकिन घुस करके फिर निकलता है कहां? उस संसार से निकल करके फिर कहां चिंतन में डूब जाता है? उस परमात्मा के चिंतन में। तो थोड़ी देर के लिए जो संसार में घुसा ना, और संसार से जो तड़प होकर भाग रहा है, तो वो संसार उसके बंधन का हेतु नहीं बनता है। जैसे जली हुई रस्सी, रस्सी जैसे दिखती है, लेकिन उस रस्सी से किसी को बांधना चाहो तो बंध, या एक दुपट्टा रंगने वाले को देखा है नहीं, रंगरेज को देखना, दुपट्टा के इस कोने को डुबाएगा और दुपट्टा के दूसरे कोने को डुबाएगा तो बीच में भी क्या हो जाएगा? वो रंग अपने आप चढ़ जाता है हल्का, देखा ना? तो हम पहले भी ब्रह्म थे, अब बाद में भी क्या थे? ब्रह्म थे। अब बीच में भी संसार में गए भी ना, तो संसार में गए भी रंग किसका चढ़ा हुआ है? उसी ब्रह्म का चढ़ा हुआ है। तो बीच का संस्कार, बीच का जो संसार है ना, उसको बांध नहीं पाता है। लेकिन ये मध्यम ज्ञानी है, जो उत्कृष्ट ज्ञानी है ना, वो तो चाहे संसार में रहे चाहे एकांत में रहे, संसार में रहते हुए भी वह अपने आप को अभिनेता की तरह अपने स्वरूप को कभी भूलता। जिसे एक अभिनेता के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है, क्यों एक होता है? अमिताभ बच्चन कुली बन गया है फिल्म में, अब बताओ वो अपने आप को करोड़पति मानेगा या नहीं मानेगा? एक उसका वो रूप है और दूसरा कौन सा रूप है? कुली का रूप है। यदि वो किसी फिल्म में स्त्री बन गया है तो उसके कितने रूप रहेंगे? दो रूप रहेंगे। एक रूप किसका रहेगा? पुरुष का, और दूसरा रूप किसका रहेगा? स्त्री का। तो स्त्री जैसा अभिनय करता है लेकिन अपने मूल स्वरूप को कभी भूलता, तो ऐसे संसार में रहकर के पति पत्नी पुत्र बाप सब बनता है लेकिन अपने मूल स्वरूप मैं ब्रह्म ही हूं उसको कभी भूलता नहीं है। तो वो स्त्री बनना पुरुष बनना उसके दुख का कारण नहीं बनता है। तो संसार से भागना भी नहीं चाहता है, संसार में भी है तो भी अपने स्वरूप में ही है। तो वह कौन सा ज्ञानी है? उच्च ज्ञानी। लेकिन हम लोग उच्च भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, बल्कि क्या बन जाते हैं? निकृष्ट, कनिष्ठ। कैसे होते हैं? पहले भी संसार घुसा है, अब मंदिर में भी जाते हैं ना तो वहां भी संसार ही घुसा रहता है, परमात्मा से संसार ही मांगते हैं, और जब बाद में जाते हैं ना तो भी संसार में ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बस ज्ञान तो जान जाते हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। तो कम से कम आप लोग क्या बनना बोलो भाई? मध्यम ज्ञानी बनो। अब मध्यम नहीं बन सकते तो कम से कम क्या बन जाना? ओ उत्कृष्ट बनो। और उत्कृष्ट नहीं बन सकते तो क्या बन जाना? मध्यम तो बनो, लेकिन मध्यम से नीचे मत आना। तो एक चित्ता, एकाग्र चित्त से उस परमात्मा का क्या करे? चिंतन चलता रहे, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा।